यीशु 30 वर्ष के थे जब उन्होंने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की। जब उन्होंने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और स्वर्ग से एक सुनाई देने वाली आवाज ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु रेगिस्तान में चले गए, जहां उन्होंने 40 दिनों तक गहन परीक्षा की अवधि सहन करी। 17:30 परीक्षा हुई। अपनी बाइबल में मती 4 खोले। एक कार्यालय भवन की कल्पना करें, जिसमें सैकड़ों कंप्यूटर एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यदि कोई दुश्मन पूरी इमारत को नष्ट करने का फैसला करता है तो वह बड़ी आसानी से एक घातक कंप्यूटर वायरस तैयार कर सकता है, जो एक बार सर्वर में डालने के बाद नेटवर्क पर हर मशीन में स्थानांतरित हो जाएगा। वायरस धीरे धीरे प्रत्येक कंप्यूटर के हर कार्य को इस तरह से दूषित कर देगा कि हालांकि कुछ हिस्से यथोचित रूप से अच्छी तरह से काम करेंगे, परंतु कुछ भी पहले की तरह काम नहीं करेगा। कंप्यूटर विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा, परंतु यदि कोई भी वायरस का इलाज नहीं खोज सका तो पूरा सिस्टम भीतर से नष्ट हो जाएगा। दुश्मन को इमारत के हर कोने को व्यक्तिगत रूप से तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि नेटवर्क उसके लिए वायरस फैला देगा। एक वायरस प्रत्येक कोने को भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि सभी मशीनें एक साथ नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। परंतु मान लीजिए कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, जबकि कार्यालय की अन्य सभी मशीनें नष्ट हो गई है। एक अकेली मशीन वायरस की विनाशकारी शक्ति से मुक्त है। यदि दुश्मन इस मशीन को नष्ट करना चाहता है तो उसे बाहर से उस पर हमला करना होगा, जिसे वो अंदर से खराब नहीं कर सका। वह कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ा नहीं है, हमें यह समझाने में मदद कर सकता है कि कैसे यीशु पूरी तरह से मानव है और फिर भी पाप की भ्रष्ट शक्ति से मुक्त है, जो मानव जाति के हर दूसरे सदस्य को प्रभावित करता है। उनके स्वभाव में पाप की ओर कोई प्रवृत्ति नहीं थी। इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यीशु की परीक्षा वास्तविक थी? हम अपनी ही बुरी अभिलाषा से फंस जाते हैं, परंतु चूंकि मसीह का स्वभाव पापी नहीं था तो वे हमारे संघर्ष को कैसे जान सकते थे? बाइबल की कहानी से हम पहले ही जान चुके हैं कि पाप रहित होना और परीक्षा में पड़ना संभव है। जब आदम और हव्वा बगीचे में थे तो प्रलोभन उनके भीतर से नहीं बल्कि बाहर से दुश्मन के सीधे हमले के माध्यम से आया था, और यीशु के प्रलोभनों में भी ऐसा ही था। जब हमने बगीचे में शैतान के हमले को देखा तो हमने देखा कि उसने 3 रणनीतियों का इस्तेमाल किया, भ्रम पैदा करना, अनुमान भड़काना और महत्वाकांक्षा जगाना। यदि यह केवल एक प्राचीन कहानी होती तो ये हमारी रुचि के लायक नहीं होती, परंतु बगीचे में जो कुछ भी हुआ उसका सीधा परिणाम आज आपके और हमारे जीवन पर पड़ा है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने लिखा, एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहराए। मनुष्य समुद्र तट पर पड़े कंकरों के समान नहीं है, हम एक पेड़ पर लगे पत्तों की तरह है। रोग जड़ से निकलता है और पाप का दाग हर पत्ते पर दिखाई देता है। हम असंबंध इकाइयां नहीं है, हम एक परिवार है और हम एक ही वंश के वंशज है। पादरी कहते हैं कि कुछ साल पहले उनके गृह देश लंदन में पैर और मुंह की बीमारी का बड़े पैमाने पर प्रकोप हुआ था। जैसे ही एक गाय में ये बीमारी पाई गई, पूरा झुंड वध के लिए नियत हो गया। यह मानव जाति की दुखद घटना है। आदम से सब मरते हैं। आदम ने मानव जाति के मुखिया के रूप में पाप किया और उसके पाप ने पूरे झुंड के लिए मृत्यु को ला दिया। इस समानता को बदलने के लिए आदम के पाप के माध्यम से एक वायरस मानव नेटवर्क में प्रवेश कर गया और हर कोने तक खुद को संचारित कर चुका है और कोई सुरक्षा चक्र नहीं है। परमेश्वर सदैव पहल करते हैं। अदन की वाटिका में शैतान आदम और हव्वा की तलाश में आया था, परंतु परमेश्वर की आत्मा यीशु को शत्रु का सामना करने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए रेगिस्तान में ले गया, जहां आदम असफल हो गया था। रेगिस्तान में शैतान की रणनीतियां वही थी जो उसने बगीचे में इस्तेमाल की थी, भ्रम, अनुमान और महत्वाकांक्षा। सबसे पहले शैतान ने यीशु के मन में उनकी अपनी पहचान के बारे में भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, प्रलोभक शुरू हुआ, क्या तू सचमुच इसके बारे में निश्चित है, शैतान पूछता है। यदि परमेश्वर तेरा पिता है तो वो तेरी बहुत अच्छी देखभाल नहीं कर रहा है। चीजों को अपने हाथों में लो, इन पत्थरों को रोटी में बदल दो। फिर दुश्मन ने रणनीति बदल दी और दूसरे तर्क का इस्तेमाल किया। मसीह की पहचान पर सवाल उठाने के बजाय उसने इस बार इसकी पुष्टि की और परमेश्वर के पुत्र के रूप में मसीह की सुरक्षा को आधार बना के उनका परीक्षा लेने का प्रयास किया। यह देखते हुए कि परमेश्वर तेरा पिता है, तू आश्वस्त रह सकता है कि वो हर परिस्थिति में तेरा देखभाल करेगा। तू ऐसी चीजें आजमा सकता है जिनके बारे में दूसरे सपने में भी नहीं सोचेंगे। तू अपने आप को इस मंदिर से फेंक भी सकता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत तुझको जमीन पर तैरा देंगे। तो आगे बढ़ो, यह करो। तीसरा प्रलोभन इस बात से जुड़ा था कि यीशु के लिए अपने पिता की इच्छा का पालन करना कितना महंगा होगा। सोचो, इसकी तुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई आसान तरीका तो होना चाहिए। यदि तू मेरे आराधना करे तो मैं तुझे इस संसार का राज्य दे सकता हूं। शैतान जानता था कि मसीह उसे कुचलने के लिए आए थे, इसलिए उसने वही किया जो भारी विरोध का सामना करने पर कोई भी सेनापति करेगा। उसने युद्ध विराम की पेशकश की। वह खुशी से यीशु की शिक्षा से भरी दुनिया में बस जाता जब तक कि मसीह पिता की योजना के साथ आगे नहीं बढ़ते और क्रूस पर नहीं जाते। परंतु यीशु मोल भाव नहीं कर रहे थे। हालांकि मसीह का स्वभाव पाप रहित था, फिर भी उन्होंने जिन परीक्षाओं का सामना किया वो उनसे कई अधिक बड़ी थी जिसे हम कभी नहीं जान सकेंगे। कल्पना कीजिए कि युद्ध के दौरान तीन वायुसेना दुश्मन के इलाके में हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उन्हें मार गिराया जाता है, पकड़ लिया जाता है और फिर पूछताछ के लिए दुश्मन द्वारा ले जाया जाता है। एक एक करके उन्हें एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है। पहला वायुसेनक अपना नाम, पद और क्रम संख्या बताता है। वे उस पर ऐसी जानकारी के लिए दबाव डालते हैं जो वो जानता है कि उसे नहीं देना चाहिए, परंतु वो ये भी जानता है कि दुश्मन क्रूर है और अंततः वे उसे तोड़ देंगे। तो वो ये सब क्यों झेले? वो उन्हें वो सब बता देता है जो वो जानता है। दूसरा वायुसेनक को लाया जाता है। वो भी अपना नाम, पद और क्रम संख्या बताता है और वह उससे जानकारी मांगना शुरू कर देता है। उसने हार ना मानने की ठान ली है, इसलिए क्रूरता शुरू होती है। आखिरकार वे उस पर हावी हो जाते हैं। वह टूट जाता है और उन्हें बता देता है जो भी वो जानता है। तभी तीसरा वायुसेनक अंदर आता है और अपना नाम, पद और कर्म संख्या बताता है। तुम मुझे नहीं तोड़ोगे, वो कहता है। ओह हाँ, हम करेंगे। हमने हर उस आदमी को तोड़ा है जो कभी इस कमरे में आया है। ये बस कुछ वक्त की बात है, तुम देखोगे। क्रूरता शुरू होती है परंतु वह टूटता नहीं है। वे तीव्र होते हैं फिर भी वो टूटता नहीं है, तो वे और तीव्र होते हैं जब तक कि ये असहनीय ना हो जाए, परंतु फिर भी वो टूटता नहीं है। अंततः एक समय ऐसा आता है जब वे वो सब कुछ आजमा चुके होते हैं जो वे जानते हैं। वे कहते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। वो इस कमरे में मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह नहीं है। हम इसे नहीं तोड़ सकते। अब इन तीन वायु सेनकों में से किसने दुश्मन की पूरी ताकत का सामना किया? दुश्मन के हमले की पूरी ताकत को जानने वाला केवल वही है जो टूटा नहीं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि मसीह की परीक्षा आपसे कम थी। केवल मसीह ही परीक्षा की पूरी शक्ति को जानते हैं, क्योंकि केवल मसीह ने ही शत्रु के हमले की पूरी ताकत का सामना किया। हमारी तरह यीशु की भी हर बात में परीक्षा हुई, परंतु वो निष्पाप थे। जिस तरह हम सभी स्वभाव से आदम के वंशज हैं और इस तरह से उसके साथ जुड़े हुए हैं, उसी तरह विश्वास के द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए मसीह के साथ जुड़ना, या जैसा कि बाइबल कहती है, उनके साथ एकजुट होना संभव है। आदम के साथ हमारे मिलन के कारण जिस प्रकार उसकी विफलता का परिणाम हम तक पहुंचता है, उसी तरह मसीह के साथ हमारे मिलन के द्वारा उनकी विजय के परिणाम हम तक पहुंचते हैं। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहराए, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहराएंगे। पहले मनुष्य ने बगीचे में पाप किया और इसका परिणाम पूरी मानव जाति के लिए मृत्युदंड था। परंतु परमेश्वर ने हमें वही नहीं छोड़ा। परमेश्वर के पुत्र ने हमारा मानव शरीर धारण किया और दूसरा मनुष्य बन गया। इस दूसरे मनुष्य ने हमारे दुश्मन का सामना किया, और जिस प्रकार पहले आदम की असफलता उसके पूरे परिवार के लिए मृत्यु का कारण बनी, उसी प्रकार अंतिम आदम की विजय उन सभी के लिए जीवन का कारण बनी जो उसके है। मानव इतिहास दो व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमता है, आदम और मसीह। पूरे मानव जाति आदम से जुड़ी हुई है और इसलिए हम सभी पाप नामक बीमारी से पीड़ित है जो मृत्यु की ओर ले जाती है। यदि परमेश्वर ने हमें वहां छोड़ दिया होता तो हम आशाहीन होते। आदम से सब मरते हैं। परंतु परमेश्वर ने एक और नेटवर्क बनाने का फैसला किया, उन लोगों का एक नेटवर्क जो यीशु मसीह के साथ एकजुट है। वे शारीरिक जन्म से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के माध्यम से एक नए जन्म से उनसे जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार आदम के पाप के परिणाम उसके नेटवर्क में फैलते हैं, उसके सभी वंशजों के लिए भ्रष्टाचार और मृत्यु लाते हैं, यीशु की धार्मिकता के परिणाम उनके नेटवर्क में चलते हैं जो उनसे जुड़े हुए सभी लोगों की शाश्वत नियति को बदल देते हैं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जब हम आदम के पाप पर विचार करते हैं तो परमेश्वर का नेटवर्क सिद्धांत विनाशकारी होता है, परंतु जब हम यीशु की धार्मिकता पर विचार करते हैं तो यह अद्भुत होता है। परमेश्वर के नेटवर्क सिद्धांत का अर्थ है कि एक व्यक्ति की विजय कई लोगों के लिए अनंत जीवन का द्वार खोल सकती है, केवल एक शर्त पर कि वे उससे जुड़े हो। आप और मैं दोनों स्वभाव से आदम में हैं। क्या आप विश्वास से मसीह में हैं? जब हम पश्चाताप और विश्वास के साथ यीशु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा हमें उनसे मिला देता है। हम अभी भी आदम में हैं। हम कई तरीकों से असफल होते हैं और एक दिन हम मर जाएंगे, परंतु जब आप यीशु के पास आते हैं तो आपके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मसीह में हैं, और इसका मतलब है कि आप उनकी विजय में भागीदार होंगे। तो आइए हम देखें कि आज हमने क्या सीखा। बाइबल यह स्पष्ट करती है कि हमारे ही तरह मसीह की भी हर तरह से परीक्षा हुई, फिर भी वह निष्पाप थे। यीशु की परीक्षाओं और हमारी परीक्षाओं के बीच अंतर यह है कि पाप हमारे अंदर रहता है और हम अपनी ही बुरी इच्छा से प्रलोभित होते हैं। मसीह की परीक्षाएं हमसे कम नहीं थी, वे हमसे भी ज्यादा थी। शत्रु द्वारा उन पर फेंकी गई हर चीज के विरुद्ध मसीह खड़े रहे और विजयी हुए। जब आप विश्वास के द्वारा यीशु के साथ एकजुट हो जाते हैं तो आप अपने सामने आने वाली परीक्षाओं की शक्ति पर विजय पाने में सक्षम हो जाएंगे।